हरे कृष्णा। तो कल कल नहीं परसों, परसों है भगवान बलदेव का आविर्भाव दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम लोग भगवान बलदेव की कुछ कथा सुनेंगे। तो ये कथा मैं यहाँ सुना चुका हूँ पिछले साल या पिछले साल सुना चुका हूँ, लेकिन कथा इतनी दिव्य है कि जितनी बार सुन जाए उतना ही रस मिलता है ना, इसलिए और शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी या पहले नहीं रहे होंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये गर्ग संहिता में बलभद्र खंड यानी बलदेव जी के चरित्र का एक अलग ही एक खंड है जिसमें 13 अध्याय हैं। तो बहुत दिव्य लीलाएँ हैं बलदेव जी की, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। राजा बहुलाश सुन रहे हैं, किससे? नारद जी से। आवाज साफ आ रही है? पंखे की आवाज से कोई बाधा नहीं पड़ रही? अच्छा, तो राजा बहुलाश सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? राजा बहुलाश। ये पंखे पंखे बंद कर दिए, आवाज साफ नहीं आ रही है ना? बारिश की है, इसको बंद कर दो, ये वाला पंखा। राजा बहुलाश सु, राजा बहुलाश सुन रहे हैं, सुनाई पड़ा? बहुलाश सु डिस्टर्बेंस। राजा बहुलाश्व सुनाई पड़ा? राजा बहुलाश्व सुन रहे हैं और सुना रहे हैं कौन? नारद जी सुना रहे हैं। राजा बहुलाश्व ने कहा, हे ब्रह्मन, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत से भी परम मधुर श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण किया। सुतम तव मुखान ब्रह्मन मंगलम परमाद्भुतम सुधा खंडात परम मिष्टम खंडम विश्वजितम परम। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमेश्वर हैं, उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। राजा बहुलाश कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रश्न है, आप लोग सुन रहे ध्यान से। राजा बहुलाश कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां, उनमें से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। परिपूर्ण तमस्यापि श्री कृष्ण से महात्मनः 16,000 पुत्र दशहतसा भवन। मुनिवर, उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। 16,100 रानियां या 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र हुए, तो कृष्ण के पुत्रों की संख्या कितनी हो गई? 16,108 में 10 से गुणा करेंगे तो 1,60,080, इतने तो पुत्र हुए। फिर उनके और पुत्र हुए तो करोड़ों हुए, और फिर उनके पुत्र तो और मतलब बहुत संख्या हो गई, गणना नहीं हो सकती। उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के धूल के कण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। कितने कृष्ण का जो है वंश में कितने संतानें हुई, गणना नहीं कर सकते हैं। परिपूर्ण तमस्यापि श्री कृष्ण से महात्मनः 16,000 पुत्र दशहतसा भवन। तेषां पुत्रांश पौत्रांश बभूवो कोटिशो मुने रजांसि भूमेर्गणयेन न कविश्चेन्हरे कुलम्। तो राजा बहुलाश प्रश्न पूछ रहे हैं, अब सुनिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि बलराम जी की पत्नी केवल एक, कृष्ण की इतनी पत्नियां और फिर उनके पुत्र बहुत ज्यादा, और बलराम जी की केवल एक पत्नी कौन है? रेवती, और उनके भी एक भी पुत्र नहीं हुआ, ये इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हुआ? बलराम जी की तो केवल एक ही पत्नी और उनसे भी कोई पुत्र नहीं हुआ, और कृष्ण की कितनी पत्नियां फिर कितने पुत्र, और बलराम जी केवल एक पत्नी और उससे भी कोई पुत्र नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। रेवत्याम बलदेवस्य रामस्यापि महात्मनः पुत्रोदया कथम नुस्याम एतन्मे ब्रूहि तत्त्वतः। नारद जी कहने लगे कि तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान शंकरसन कामपाल हैं, उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। बाढ़ मुक्तम भगवतः शंकरसंस्याच्युताग्रजस्य बलभद्रस्य रामस्य कामपालस्य कथां सर्वथा तवाग्रे कथयिष्यामि। दुर्योधन के गुरु हैं, उनका नाम है प्राट विपाक मुनि। दुर्योधन के गुरु हैं प्राट विपाक मुनि, योगियों के और मुनियों के ईश्वर। एक दिन हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों द्वारा पूजन किया और महामूल्य मान सिंहासन पर विराजमान किया। दुर्योधन ने उनकी वंदना की, प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और अपने मन के संदेह का स्मरण करके उनसे कहा कि भगवान शंकरसन साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण और किनकी प्रार्थना से आगमन हुआ है। दुर्योधन भक्त है बलराम जी का ना, तो बलराम जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, भूमंडल पर किस कारण से उनका आगमन हुआ, किसकी प्रार्थना से आगमन हुआ। उन्होंने मेरे नगर को उल्टा करके टेढ़ा कर दिया, मेरे नगर को उल्टा करके टेढ़ा कर दिया। पता है बलराम जी ने उल्टा के टेढ़ा किया था नगर? नहीं, कृष्ण का पुत्र सांब था, है ना, तो सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। तो फिर इन लोगों ने जो है 6 महारथियों ने अधर्म से उस बालक को पराजित करके कैद कर लिया। तो बलराम जी जो है आए थे समझौता करने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है, अन्याय है और हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं आपस में, तो आप जो है सांब को छोड़ो और अपनी कन्या का विवाह करो सांब के साथ। तो दुर्योधन आदि जो है ये सब जो कौरव लोग थे वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे बलराम जी के सामने। तो बलराम जी ने कहा कि इनको जो है मैं कुछ शिक्षा दूंगा, शिक्षा दंड। तो उन्होंने क्या किया, अपने हल से जो है हस्तिनापुर की भूमि को जो है अलग कर लिया पृथ्वी से, तोड़ दिया और खींचना शुरू किया गंगा जी में बहाने के लिए, हस्तिनापुर। और बहाएंगे कैसे, नीचे हस्तिनापुर को पूरा नीचे ले जाएंगे, गंगा जी के नीचे, जमीन के नीचे, गंगा जी के पानी के नीचे। तो हस्तिनापुर की जो जमीन है वो बिल्कुल टेढ़ी है और गंगा जी की तरफ झुकी हुई है। तो उस समय दुर्योधन का महल भी तड़ तड़ कर करके टूट गया, ध्वस्त हो गया, और भी महल जो है ध्वस्त हुए। तो जो है सब फिर बलराम जी से प्रार्थना करने लगे कि आपके बल का हमें पता नहीं था, आप क्षमा करिए। इस प्रकार से सांबा का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ और बलदेव जी जो है द्वारका वापस आए। तो दुर्योधन कह रहा है कि बलदेव जी का जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है असीमित है, उन्होंने मेरे नगर को उलटकर टेढ़ा कर दिया और वे मेरे गुरु हैं, मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया था, आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो प्राट विपाक मुनि ने कहा कि हे युवराज, दुर्योधन को बोल रहे हैं हे युवराज, यादव श्रेष्ठ बलदेव जी का प्रभाव सुनो, उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। युवराज है कुरुद्वहा यदुवरस्य प्रभावम सुनो यच्छ्रवणे पाप हानि प्रम्भूया। इसी द्वापर के अंत की बात है, राजाओं के रूप में करोड़ों दैत्यों ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से आक्रांत कर दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं और शंकर जी को साथ लेकर वैकुंठनाथ के पास गए और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से कटे हुए ब्रह्मांड के छत्र द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित उस ब्रह्म द्रव के समीप उपस्थित हुए। ब्रह्म द्रव कौन सा है? कारण समुद्र। ब्रह्मांड के बाहर निकले ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ में ब्रह्मा जी और सब देवता लोग जो है ब्रह्मांड के बाहर निकले। तो ब्रह्म द्रव में देखा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं देखा। तब वे ब्रज नदी के तट पर पहुंचे। ब्रज नदी कहां पर है? गोरखधाम में। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत करोड़ सूर्यों के ज्योतियों के समान तेजो मंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान किया, प्रणाम किया। वहां देवताओं से ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। भगवान संकर्षण कहां पर है? गोरखधाम में। उस तेज को जब प्रणाम किया तब दर्शन हुए। अगर प्रणाम ना करें बिना भक्ति के तो तेज के अंदर दिखाई नहीं देगा कि क्या है। अनंत करोड़ सूर्यों का तेज। जब प्रणाम किया तो संकर्षण भगवान के दर्शन हुए। उनके हजार मुख से और उनका शरीर अनंत गुणों से लक्षित था। वे अनंत भगवान कुंडल आकार में विराजित थे, कुंडल के आकार में। उन अनंत की गोद में उन्हें दिखाई दिया वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, कुंज निकुंज, लता की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल, गोपी और गोकुल से परिपूर्ण गोलोक धाम। अनंत भगवान की गोद में गोलोक धाम है जिसमें सब है, है? गोपाल हैं, गोपियां हैं, गोवर्धन है, यमुना जी हैं, सब कुछ है। वहां पर निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके अंतःपुर में पहुंचे। वहां उस निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान श्याम सुंदर भगवान की श्याम सुंदर कांति है। पीतांबर पहने हुए हैं, उनके गले में वनमाला सुशोभित है और बंसी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नुपुण किंकणी कड़े बाजूबंद हार उज्ज्वल कौस्तुभ मणि और अंगूठियों से अलंकृत हैं। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान किरीट और कुंडल सुशोभित कर रहे हैं। किनको? किनको? भगवान कृष्ण को। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। अलकावली मतलब केस। ऐसे कमल मुख भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुनकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आदेश दिया और हजार मुख वाले भगवान अनंत से यों कहने लगे। क्या बोले? हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। भगवान ने जो है गोलोक धाम में कृष्ण ने अनंत को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाओ, फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो, तब मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। अंग पुरा तुम अभी वसुदेवस्य देवक्याम भूत्वा रोहिणी उदरात आविर्भव पश्चात देवक्या पुत्रताम अहम् प्राप्स्यामि। तो प्राग विपाक मुनि सुना रहे हैं ये कथा। किसको? दुर्योधन को सुना रहे हैं। तो प्राग विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हजार मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में विराजमान हुए। जब गोरखधाम से अगर जाना है तो पहले सभा में अपने सब संगियों को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, हैं? अनंत भगवान की अपनी अलग सभा है, उनके अलग अपने संगी हैं, तो उसमें जो है अपनी सभा में अब जो है विराजमान हुए। उसी समय सिद्ध चारण और गंधर्व ने आकर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुगोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सामने उपस्थित हुआ। उनका रथ भी गोलोकधाम में है बलदेव जी का, है? और उसकी ध्वजा में कौन सा चिन्ह है? ताल, ताल का चिन्ह है, ताल ध्वज है। और सारथी का नाम सुमति, कृष्ण के सारथी का नाम दारुक है ना, बलदेव जी के सारथी का नाम सुमति, और कृष्ण के रथ की ध्वजा में चिन्ह है गरुड़ का, गरुड़ ध्वज, बलराम जी ताल ध्वज। तो सुमति नामक सारथी उनके सामने उपस्थित हुआ, रथ में घोड़े जोत दिए हैं तैयारी करके। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल भी उपस्थित हुआ बलराम जी के सामने। बलराम जी का आयुध क्या है? मूसल। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल और दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल भी उपस्थित हुआ सेवा में। हल और ब्रह्ममय कवच भी उपस्थित हुआ। कवच कहाँ लगाते हैं? छाती में। कवच, हल, मूसल, कवच है? इस सामने आए बलराम जी की सेवा में। तब वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में शेष जी पधारे। कौन आए? शेष जी आए। कहां से? रमा वैकुंठ धाम से। रमा वैकुंठ धाम से शेष जी पधारे। उनके 1000 फणों पर मुकुट सुशोभित थे। 1000 फणों पर, एक एक फण पर एक एक मुकुट, 1000 मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारण और पाणिनी और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे शेष जी आए और स्तुति करके संकर्षण के शरीर में लीन हो गए। जैसे कृष्ण के शरीर में जितने उनके अवतार हैं वो लीन होते हैं, तो संकर्षण के अवतार जितने हैं वो संकर्षण के शरीर में लीन होते हैं। उसके बाद अजित वैकुंठ से 1000 मुख वाले शेष जी आए। देखो पहले आए थे रमा वैकुंठ से, दूसरे शेष जी आए कहाँ से? अजित वैकुंठ से। शेष जी आए और वे अनेक रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेष नाग ने उनका स्तमन किया। स्तमन करने के पश्चात वे उनके शरीर में लीन हो गए। अभी दो शेष लीन हुए हैं। अब तीसरे श्वेत द्वीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित 1000 फणों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलाम्बरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभाव वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे। ये तीसरे शेष जी आए कहाँ से? आए श्वेत द्वीप से आए। वे भी सबके देखते देखते अनंत के शरीर में लीन हो गए। कितने हो गए शेष? 3 शेष हो गए। फिर उसी समय इलावृत वर्ष से शेष जी आए। इलावृत वर्ष इसी पृथ्वी में ही एक स्थान है। इलावृत वर्ष शेष जी आए। भगवती पार्वती की दासी करोड़ों स्त्रियों के यूथ उनकी सेवा कर रहे थे। मुकुट मंडित 1000 मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट कुंडल और बाजू बंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के शरीर में लीन हो गए। तब कितने शेष हो गए? 4। पहले रमा वैकुंठ से आए, दूसरे अजित वैकुंठ से आए, और तीसरे श्वेत द्वीप से आए, और चौथे इलावृत वर्ष से आए। 4 है ना। तब पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। पृथ्वी के नीचे पाताल 32,000 योजन नीचे, वहां से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, सांख्यायन कुलस्थ बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों से उनके अपार शोभा हो रही है। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके साथ हैं। और वासुकी महासंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र कुहक कालिया तक्षक कंबल अश्वतर और देवदत्त आदि नाग उन पर चमर डुला रहे हैं। बड़े बड़े नागराज उनके चमर डुला रहे हैं। कस्तूरी अगर केसर और चंदन के द्वारा लिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही हैं। सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा है। और हाटकेश्वर त्रिपुर बल कालके कली और निवाद कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे हैं। बहुत से दैत्य हैं। ग्यारह रुद्र व्यूह बनाकर उनके आगे आगे चल रहे हैं। और कस्तूरी मृग काम धेनु और वरुण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वे शेष जी गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फण पर सारा भूमंडल रखा है। हजार फणों में से एक फण पर पूरा भूमंडल रखा है। कैसे? सरसों के दाने की तरह। आप समझ रहे हैं, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं इतना बड़ा जो भूमंडल है उनके हजार फणों में से एक फण पर रखा हुआ है। कैसे? सरसों के दाने की तरह रखा है। पता नहीं चलता है, हैं? आपके सिर में सरसों का दाना कोई रख दे तो क्या पता चलेगा आपको? हैं? उनके सिर में जो है सरसों के दाने की तरह रखा हुआ है। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। कितने शेष जी हो गए? पांच। पांच हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा। गोलोक धाम के जितने पार्षद हैं उनके सामने सब हुआ। सब चकित होकर के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तब अनंत मुख वाले अनंत भगवान शंकरसन ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर जाऊंगा। बलदेव जी कह रहे, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। क्या करो? तुम लोग यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तब वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और सूरवीर हो, तुम यहां ही रहो। रथ के साथ तुम कहां रहो? यहां ही रहो। किससे कह रहे हैं बलदेव जी? सारथी से कह रहे हैं, तुम यहां ही रहो, किसी प्रकार का शोक ना करो। जिस समय युद्ध मैं तुम्हें याद करूंगा, युद्ध के अवसर पर जब मैं तुम्हें याद करूंगा उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। बलदेव जी कह रहे हैं कि मेरे रथ को लेकर के उसी समय आना। किस समय आना? हाँ, जब युद्ध में युद्ध का अवसर प्राप्त हो और मैं याद करूंगा तो आ जाना। तो आपको पता है किस समय आया था सारथी? जरासंध ने मथुरा में जब आक्रमण किया था, है ना, तब आकाश से दो रथ आए थे। तो कृष्ण का भी रथ आया, सारथी भी आया, सब आयुध आए, और बलदेव जी का भी रथ, सारथी, आयुध, सब कुछ आए। फिर भगवान बलदेव जी कहते हैं, हे हल और मुसल। किनको बोल रहे हैं? हल और मुसल। हे हल और मुसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। हल मुसल को जो है भगवान अपने हाथ में नहीं रखते, जब याद करते हैं तो उनके हाथ में आ जाते हैं, है? और फिर चले जाते हैं, है ना। मतलब रखने का, स्टोर करने का कुछ चक्कर नहीं है, है? ऐसे आयुध हैं भगवान के, है? स्टोर करने का कुछ चक्कर नहीं है, कहाँ पर रखेंगे, है? फिर ढूंढो, लाओ, निकालो, ये सब कोई चक्कर नहीं है, है? जब याद करेंगे तो हाथ में हल मुसल आ जाते हैं, उन्हें तो चले जाते हैं, है? हे कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना, जब मैं इच्छा करूं तो कवच आ जाएगा छाती में, है? और फिर चला जाएगा।
है ना। हे पाणिनि आदि व्यास आदि मुनियों, हे ग्यारह रुद्रो, हे कोटि कोटि रुद्रो, हे गिरिजापति शंकर जी, हे गंधर्वो, हे वासुकी आदि नागराजो, हे निवाद कवच आदि दैत्यो, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष के यदुवंश में अवतार लूंगा। तुम सब वहां सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राण विभाग मणि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के बाद भगवान अनंत ने नाग कन्याओं से कहा, जो नाग कन्याएं हैं उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं। नाग कन्याओं से कह रहे हैं बलदेव जी, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूं। अभिप्राय का मतलब क्या है? कि तुम मुझे पति बनाना चाहती हो है? तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना है ना। तो नाग कन्या गोपियां ये अलग ही हैं जो बलदेव जी के से संबंधित हैं। जो कृष्ण से संबंधित गोपियां हैं वे अलग हैं, और जो बलदेव जी से संबंधित गोपियां हैं ये नाग कन्या गोपियां हैं। इनका एक अलग ही युद्ध है। इनका कृष्ण से संबंध नहीं है, इनका बलदेव जी से संबंध है। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रासमंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब निवाद कवचों के राजा कलि ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की। किसने? कलि। कलि ने बलदेव जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, हे भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा? आप जहां पधारेंगे वहां ही मैं भी चलूंगा। आपके बिना मैं नहीं रह सकता। कौन बोल रहा है? कली। कली कह रहा है, हे पिता, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्तवत्सल हैं, अतः मुझे साथ ले चलिए। हम किम करिष्यामि मैयाज्ञां कुरु भगवन् यत्र त्वं गमिष्यसि तत्राप्यहं गमिष्यामि हवाव तद्वियोगेन महान् खेदो भविष्यति सहैव मां नय त्वं भक्तवत्सलोऽसि। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न होकर अपने भक्त कली से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहां कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। बलराम जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कलि अपने स्थान पर चला गया। उसी कलि स्वरूप तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है, राज विपाक मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? दुर्योधन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम वही हो बलदेव जी के भक्त कलि, उनकी आज्ञा से तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। राज विपाक मुनि ने कहा, तब करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पर आई। अब कौन आई? नाग लक्ष्मी आई है। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने सभा में आकर अपने स्वामी महान अनंत भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नागलक्ष्मी कह रही हैं, आप जहां जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी है? आपके बिना क्या होगा? मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नागलक्ष्मी का गला भर आया था। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारणों के भी कारण है, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है, जिनका शरीर ऐरावत के समान बृहद तर्प रूप है, अपनी प्रिया की यह दशा देखकर कहा, हे रंभोरू, तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाकर रेवती के शरीर में प्रवेश करो। पृथ्वी में जाकर के रेवती के शरीर में प्रवेश करो, वहां से फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। ये सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती है? सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी सुंदर कथा है। जो लोग सो रहे हैं वो आंखें खोलें। हरि बोल। आंखें खोलिए, सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। या तो खड़े हो जाइए। क्या सुना? नागलक्ष्मी बोली कि वो रेवती कौन है, किनकी कन्या है, कहाँ रहती है, आप विस्तार से मुझे बताइए। ये सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है, आदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। कश्यप जी की पत्नी कद्रु के गर्भ से मैं उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडलू के समान अपने एक फट पर धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने क्या किया? अखंड भूमंडल को कमंडलू के समान अपने एक फट पर धारण कर लिया और सब लोगों से नीचे के लोक में जाकर विराजमान हो गया पाताल में। मैंने इस प्रकार वहां स्थित होकर चक्षुष के पुत्र अतिबल, चाक्षुष नामक मनु, सप्तद्वीपमय अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। उस समय चाक्षुष मनमंत्र चल रहा था। चाक्षुष मनमंत्र छठवां है, ये व्यवस्थित मनमंत्र सातवां चल रहा है। तो चाक्षुष मनमंत्र जब आया तो बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। किनके चरण कमल पर बड़े बड़े राजा मस्तक घिसते थे? चाक्षुष मनु, चाक्षुष मनु। इंद्र आदि देवतागण उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मनु के सुद्युम्न आदि अनेक पुत्र हुए। तब मनु ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिष्मती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सुन रहे सब लोग, किसने यज्ञ किया? चाक्षुष मनु ने यज्ञ किया। तो कन्या यज्ञ कुंड से पैदा हुई, क्या नाम था? ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपने उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? पिता ने पूछा अपनी कन्या से, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। अब कौन है वो मैं नहीं जानती, जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने, कन्या ने उत्तर दिया। ये सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। चाक्षुष मनु ने इंद्र को बुलाया। किसको? इंद्र को बुलाया, सबसे अधिक बलवान समझ करके, और आदर पूर्वक आसन पर बिठाया और कहा, आपसे अधिक और कोई बलवान है कि नहीं, आप सत्य सत्य बताइए। चाक्षुष मनु ने इंद्र से पूछा, क्या पूछा? आपसे जब कोई बलवान हो तो बताओ और सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि पृथ्वी देवी ने कहा है सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं लेकिन मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता है। पृथ्वी देवी ने क्या कहा है कि सब कुछ सहन कर सकती हूं लेकिन मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे सहन नहीं होता। इंद्र ने कहा मैं बलवान नहीं हूं। इंद्र ने क्या कहा? मैं बलवान नहीं हूं, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है। कौन अधिक बलवान है? वायु देवता। किसने कहा? इंद्र ने कहा। मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूं, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूं। जैसे जल बरसाना है तो वायु की सहायता के बिना इंद्र जल नहीं बरसा सकते। यूं कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आह्वान किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे अधिक बलवान है क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता है। पर्वतों के कारण वायु का वेग रुक जाता है। तब ये क्या कर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया, सच बताइए भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है, ये सब पर्वतों में सबसे अधिक बलवान कौन है, और से भी अधिक बलवान कौन है। पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है। कौन बलवान है? भूमंडल। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर कहा, सच से बताओ तुमसे अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं। ये सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण है, वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं, आदि देव हैं, वासुदेव रूप हैं, हजार मुख वाले हैं, उनका शरीर गजराज के समान विशाल है, कैलाश के समान उज्जवल प्रभाव वाले, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है, सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्भ को चूर्ण करने वाले हैं, कमल पत्र के समान सुंदर नेत्र हैं, दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से शोभित हैं, जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं, सिद्ध चारण गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है, देवता दानव सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं, जो सबसे ऊपर विराजमान है, जिनके एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला पापी भी मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण है, वे रसातल के मूल भाग में विराजमान है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ये किसने कहा? भूमंडल ने कहा, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और उनको आप बुला भी नहीं सकते, आपके अधीन भी नहीं है वो कि आप बुलाएं, आपके बुलाने से आ जाएं। अभी तक जितने जितने लोगों को बुलाया वो आ गए, आपके अधीन है। पहले किसको बुलाया? इंद्र को बुलाया, इंद्र से बलवान वायु, उनको बुलाया वायु से बलवान पर्वत, उनको बुलाया पर्वत से बलवान भूमंडल, उनको बुलाया, उनको नहीं बुला सकते हैं। महा अनंत ने कहा, तो ये कथा सुना रहे हैं, अनंत भगवान ही सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नागलक्ष्मी को, नागलक्ष्मी सुना रहे हैं। तो महाअनंत ने कहा, इस प्रकार कहकर भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। अब वो तो भक्ति से ही प्राप्त होंगे, उनको तो बुला नहीं सकते आदेश से कि भाई चले आओ, इधर आओ इधर आओ। भगवान को तो भक्ति के द्वारा ही कोई प्राप्त कर सकता है, उनके पास जा सकता है या वो आ सकते हैं है? तो ज्योतिषमती चाक्षुष मनु की जो पुत्री थी, पिता की आज्ञा लेकर के कहाँ चली गई? विंध्याचल पर्वत पर। किस लिए? तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। उसने लाख वर्षों तक वहां तपस्या की। कितने वर्षों तक? 100,000 वर्षों तक तपस्या की। वो गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तपस्या करती थी। गर्मी के दिनों में पांच प्रकार की अग्नि, पांच प्रकार की अग्नि कैसी होती है? एक तो गर्मी मतलब सूर्य के ऊपर धूप है, और दूसरी गर्म जमीन, नंगी जमीन, दो हो गई, और तीसरी चारों ओर आग जलाए, चौथी भूख की गर्मी, पांचवी प्यास की गर्मी, पंचाग्नि। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपती और वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती, और सर्दी के दिनों में गले तक ठंडे पानी में डूबी रहती, और कितने साल तक तपस्या की?
1,00,000 साल
ऐसी तपस्या। जाड़ा गर्मी बरसात में जो है कैसे तपस्या की? 1,00,000 साल तक तपस्या की। तपस्या काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी। ग्रीष्मे पंचाग्नि तप्ता वर्षासु सर्वासार धारिणी शशिर आकंठ मग्ना शीतोदके भूत्वा स्थंडलसायिनी बभूव। महानंद ने कहा, तब सैकड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदरी तपस्या में संलग्न नव यौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर दृष्टि पड़ी, किनकी गिनना, कितने देवताओं की दृष्टि पड़ी, इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर, इतनी देवताओं की दृष्टि पड़ी। सात तो ये दिन हो गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सात तो ये हो गए, और उनके अलावा इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, पांच, सात पांच बारह, बारह देवताओं की दृष्टि पड़ी एक साथ। हैं, किसकी दृष्टि पड़ी? पत्नी बनाने के लिए। हैं, उसके रूप को देखकर उनके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त होती और सम्मोहित हो गए। तब उन्होंने ज्योतिष मते के आश्रम पर जाकर कहा, हे सुंदरी, हे रंभोरो, तुम धन्य हो, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था भी तप के योग्य नहीं है, तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। कितने लोग? बारह लोग आकर के बोल रहे हैं, बोलो क्या चाहती हो, किसकी तपस्या कर रही हो? ये सुनकर ज्योतिषमती बोली, हजार मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसलिए तप कर रही हूं। ज्योतिषमती की ये बात सुनकर इंद्र आदि देवता हंस पड़े। तो ऐसे होता है अपराध, है? इंद्र आदि देवता हंस पड़े, अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र बोले, इंद्र ने कहा, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही तप कर रही हो। मैं देवताओं का राजा हूं, मैंने सौ अश्वमेध यज्ञ किए हैं, मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे वरण करो, है? सर्प को क्या पति बना रही हो? यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूं, तुम मुझे वरण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, सुंदरी, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूं, मुझे राजाधिराज समझो, संकर्षण की प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, हे विशाल लोचने, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख हूं, अन्य सभी के प्रति वासना छोड़कर तुम मेरा भजन करो। किसने कहा? अग्नि ने कहा। वरुण ने कहा, हे भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी और लोकपाल हूं, मेरे हाथ में सदा पास रहता है, सातों समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा है, ये समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। अब सूर्य देवता बोले, अब सात दिन क्रम से आएंगे ना सूर्य, है? सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुष पुत्री, मैं जगत का नेत्र हूं, मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, अतः पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो। मैं स्वर्ग का आभूषण हूं, कौन? सूर्यदेव। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का ईश्वर हूं, नक्षत्रों का राजा हूं, अमृत की खान हूं, ब्राह्मण श्रेष्ठ और कामिनियों को बल प्रदान करने वाला हूं, हे गजकामिनी, तुम मेरी उपासना करो। सूर्य चंद्रमा के बाद कौन आएगा? सूर्य के बाद चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद मंगल, है ना? क्रम है ना, वही वही दिन तो है। मंगल बोले, ये पृथ्वी मेरी माता है, ये पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात पुरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं। मेरा नाम मंगल है, हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली तुम मुझे अपना पति बना लो। बुद्ध ने कहा, मैं बुद्धिमान, सूरवीर और कामिनियों के रस को बढ़ाने वाला बुद्ध हूं, तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। कौन बोले? बुद्ध। अब उनके बाद कौन आएंगे? बृहस्पति। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी, साक्षात बृहस्पति हूं, हे सुबे, ये समझकर तुम मेरी उपासना करो। बृहस्पति के बाद कौन? शुक्र। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु और भृगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूं, हे देवी, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। किसने कहा? शुक्र ने। अब शुक्र के बाद कौन आएगा? शनि। शनि बोले, हे कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूं, देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है, अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म करने की शक्ति रखता हूं, अतः सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वरण कर लो। तो भगवान महाअनंत ने कहा, इन सब की बात सुनते ही ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए। क्या हो गए? लाल। क्यों हो गए लाल? जब बता दिया अपना अभिप्राय कि मैं भगवान अनंत को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उसके बाद भी जो है इतनी हिम्मत बोलने की है, और उनको त्याग करके मेरी पत्नी बनाओ, मेरी पत्नी बनाओ, 12 लोग जो है अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो उसके नेत्र लाल हो गए, ओठ कांपने लगे, भौहें टेढ़ी हो गई, क्रोध की अग्नि भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया। किसने मेरा स्मरण किया? ज्योतिषमती ने। मेरा मतलब संकर्षण भगवान का स्मरण किया। अत्यंत क्रोध की आवेश में आ गई ज्योतिषमती के क्रोध से, ब्रह्मलोक से लेके पाताल और भूमंडल से सारा ब्रह्मांड कांप उठा, सब और महान भय छा गया। ये देखते ही सांप के भय से कांपते हुए इंद्र आदि देवताओं ने संत साहों से पूजन की सामग्री ली। 12 के 12 देवता जो है पूजा की सामग्री लेके आए, ज्योतिषमती के चरणों कमलों पर गिरे और रक्षा करो चिल्लाने लगे। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषपति ने उन्हें पृथक पृथक साप दे दिया। दे दिया क्या? दे दिया। तदेव शक्राद्या साप भयभीता प्रकंपिता कृतबलि पाणय पाद पद्मे परितो निपेतु पाहि पाहीति जगुष्टथैर्यत्थम शांताभि ज्योतिषमति पृथक पृथक तान ससाप। अब क्या क्या साप दिया? सबसे पहले अच्छा सबसे पहले शनि को साप दिया। अच्छा उल्टे से चल रही ना, उल्टी उल्टे क्रम से चल रही है, वो जिस क्रम से चले थे वो उल्टे क्रम से चल रही है। तो सबसे अंत में कौन था? शनि था। तो शनि को सबसे पहले, शनि तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है, तो अभी पंगु हो जा। पंगु मतलब लंगड़ा नहीं, पंगु, पंगु माने लंगड़ा है, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा तू क्या बन जा? लंगड़ा, तू लंगड़ा बन जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए। दृष्टि कैसे हो जाए? नीची, तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जा, तू अत्यंत काला कलूटा हो जा और दुबला पतला हो जा, और निंदनीय काले उड़द का भोजन किया कर। तेरा भोजन क्या है? निंदनीय काला उड़द और काले तिल का तेल पिया कर, पीने के लिए काले तिल का तेल और खाने के लिए काला उड़द। अब शनि के बाद किसका नंबर आया? शुक्र का। शुक्र तू अभी एक आंख से काना हो जा, एक आंख से काना हो जा। फिर किसका नंबर? बृहस्पति। बृहस्पति तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। फिर किसका नंबर? बुध। बुध 13 बार निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी से कुछ कहने या कहीं यात्रा करने से सफलता नहीं मिलेगी। बुधवार को कुछ कहने से या यात्रा करने से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो कोई चिंता नहीं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो कोई अशुभ सब दूर हो जाता है, है ना। मंगल, बुधवार के बाद किसका नंबर है? मंगल। तू बंदर के समान मुंह वाला हो जा। अब किसका नंबर आया? चंद्रमा। तुझको चंद्रमा, तुझे राज यक्षमा करो हो जाए। राज यक्षमा टीवी, टीवी अंग्रेजी में बोलते हैं और इसका संस्कृत शब्द है राज यक्षमा, है ना। ये क्षय रोग किसी को बोलते हैं ना, क्षय रोग, राजयक्ष्मा, तुझे क्षय रोग हो जाए। तो हो गया ना, चंद्रमा को क्षीण होता जाता है, टीबी, टीबी का रोग है चंद्रमा को। पूर्णिमा के बाद क्या होता है? घटने लगता है ना। सूर्य, चंद्रमा के बाद किसका नंबर है? सूर्य। सूर्य तेरे दांत टूट जाए। अब नंबर आया वरुण देवता का, उसी क्रम में वरुण देवता, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। जलंधर, जलंधर रोग क्या होता है? पेट में पानी भर जाता है, जलोदर, जो भी हो शायद वही होगा। फिर नंबर आया किसका? अग्नि का। अग्नि तू सब कुछ खाने वाला बन, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला बन। फिर कुबेर, कुबेर का नंबर आया, कुबेर तेरा पुष्पक विमान छिन जाए। किसने छीना था पुष्पक विमान? रावण ने छीना था। फिर नंबर आया यमराज, यमराज बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करें और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। तो रावण से यमराज को हारना पड़ा था। फिर सबसे अंत में जो सबसे पहले थे, सबसे बाद में नंबर आया कौन? इंद्र। सबसे ज्यादा साप को इंद्र को दिया, सबसे ज्यादा देवाधम इंद्र, अब देवताओं के राजा हैं। देवाधम इंद्र तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सची हर ले जाएगी। तो किसने हरण किया सची का? नहुष, स्वर्ग के राजा नहुष। वो स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। 1000 साल तक इंद्र को जो है भागना पड़ा। अरे स्वर्ग के राजा किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी। तो किसने हराया था युद्ध में? रावण ने हराया था। और तू पास में बांधा जाएगा और फिर लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकार पूर्ण कारागार में डाल देंगे। वो इंद्रजीत रावण का जो पुत्र था, बांध करके इंद्र को लंका में अंधेरे कारागार में डाल दिया। तो भगवान महानंद बोले इस प्रकार ज्योतिषमती के द्वारा साप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र को प्रत हो गई। इंद्र को ज्यादा, मुझको सबसे ज्यादा साप दिया, इंद्र को प्रत हो गए। इंद्र ने भी ज्योतिषमती को साप देकर कहा, हे क्रोध कारिणी, संकर्षण को पति रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी भी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। साप दे दिया इंद्र ने। तो अब राजा बहुलाश का जो प्रश्न था उसका उत्तर मिला कि बलदेव जी को कोई पुत्र नहीं, एक ही पत्नी लेकिन पुत्र एक भी नहीं, है ना। तो साप किसने दिया था? इंद्र ने साप दिया। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की, चले गए। और ज्योतिषमती फिर से तपस्या में लग गई। तब सारे जगत के कारण ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती की तपस्या की ओर गई। ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती की ओर नहीं गई, तपस्या की ओर गई। तपस्या की हंस पर सवार होकर ब्राह्मणों और शक्तियों के साथ अपने भवन से वहां पर आई। आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा ने उसको संबोधन करके कहा, हे ज्योतिषमती चाक्षुष मनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया, इस तप में तुम सिद्ध हो गई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो, वर मांगो। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। तो गले तक वो पानी में थी तो बाहर निकली, है? इसका मतलब वो समय चल रहा था कौन सा? जाड़े का, जाड़े का समय चल रहा था। तो पानी से बाहर निकली, उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तमन किया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि देव, यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न है तो 1000 मुख वाले भगवान शंकरसन मेरे पति हो, मुझे यही वर दीजिए। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही वैवस्वत मनमंत्र प्रारंभ हुआ है। चाक्षुष मनमंत्र के बाद वैवस्वत मनमंत्र प्रारंभ हो गया। इसका मतलब 1,00,000 साल रह गए थे, चाक्षुष मनमंत्र के 1,00,000 साल जब रह गए थे तब उसने तपस्या शुरू की थी, है ना। और एक मनमंत्र कितने साल का होता है? 1,00,000 साल का नहीं होता है, 30 करोड़ साल का होता है। कितना? एक मनमंत्र 30 करोड़ साल का होता है। ऐसे 14 मनमंत्र जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, समझ गए? 30 करोड़ साल कैसे निकालेंगे, हैं? क्या एक मनमंत्र जो है 71 चतुर्युगी का होता है, 71 चतुर्युगी का। और 4 युग कैसे होते हैं? कलयुग कितना है? 4,32,000 साल, द्वापर इससे दूना, त्रेता उससे दूना, त्रेता इससे 3 गुना और सतयुग इससे 4 गुना, है ना। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कलयुग अगर मिलाए हैं तो कितने कलयुग हो गए चारों युगों में? 10 कलयुग हो गए, है ना। तो 10 कलयुग का मतलब 432,000 में 10 से गुणा करो, 43,20,000 साल की चतुर्युगी हुई। इसमें 71 से गुणा करो तो एक मनमंत्र का समय निकलेगा, तो लगभग 30 करोड़ साल होता है, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आज से व्यवस्थित मनमंत्र प्रारंभ हुआ है, इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान शंकर स्वयं तुम्हारे पति होंगे। अब 27 चतुर्युगी बीत जाएंगी, 27 चतुर्युगी का मतलब एक चतुर्युगी कितना है? 43,20,000 साल, उसमें 27 से गुणा करो, ठीक है ना। 27 चतुर्युगी बीत जाए और फिर द्वापर युग आएगा, है ना। तो 27 से गुणा करके फिर सतयुग बीतेगा और त्रेता भी बीतेगा, फिर द्वापर भी बीतेगा। द्वापर के अंत में बलदेव जी की तुम पत्नी बनोगी, हैं। अब इसका हिसाब लगाओगे तो 12 करोड़ साल होता है। 12 करोड़ साल के बाद तुम्हें भगवान बलदेव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये सुनकर ज्योतिषमति ने ब्रह्मा जी से कहा, देव, ये तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को श्राप दिया वैसे आपको भी श्राप दूंगी। बारह करोड़ साल तक मैं बैठी रहूंगी, है। ज्योतिषमती किस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी सांप के भय से डर गए, क्षण भर विचार करने के बाद बोले। तो ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया, इति प्रोक्तो ब्रह्मा सांप भीता क्षण विचारे पुनराह। तो क्षण का मतलब 4 मिनट, है, एक क्षण का मतलब 4 मिनट। तो ब्रह्मा जी ने 4 मिनट तक विचार करके कहा, हे राजकुमारी, तुम अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो, वे राजा कुशस्थली में विद्यमान है, इससे इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। तो ये होता क्या है, भागवत में आता है कथा, भागवत में कथा आती है कि वो राजा जो है उसमें तो ककुद्मी उनकी पिता बताए गए हैं, यहाँ रेवत बताए गए। तो रेवत राजा जो है अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के लोक में गए, और ब्रह्मा जी के लोक में समय नृत्य और गीत चल रहा था, तो उनको 20 मिनट वहाँ रुकना पड़ा, ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट वहाँ रुकना पड़ा, है ना। तो 20 मिनट में यहाँ की कितना समय बीतता है पता है? ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड जब होता है यहाँ के 1,00,000 साल बीतते हैं, यहाँ के 1,00,000 साल जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड बीतता है। तो अब आप निकालिए कि ब्रह्मा जी की जब 20 मिनट बीते तो यहाँ कितना समय बीता है, तो निकालोगे तो 12 करोड़ साल निकलता है। तो 20 मिनट में यहाँ के 27-28 चतुर्युगी बीत गई, 12 करोड़ का साल का समय बीत गया। तो ब्रह्मा जी ने जो है मतलब ये व्यवस्था कर दी कि मैंने व्यवस्था कर दी है किसी जीवन में तुमको जो है वो पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे बंदे हुए, हैं। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, हाँ, तो करीब एक घड़ी से भी कम है, 20 मिनट में ही जो। और अगर थोड़ा देर करेंगे तो कितना समय बीत जाएगा, जल्दी जाओ, अब वो बलदेव जी का अवतार हो गया है, जल्दी जाओ, हैं, ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी कहते हैं आप देर मत करो, है ना, जल्दी जाओ। ज्योतिषमति को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तब ज्योतिषमति ने अनर्थ देश में कुशस्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया, उस समय उसका नाम रेवती रखा गया। अनर्थ देश वही है जो द्वारका जैसे कहते हैं, वो रूप गुण और उदारता से शोभित नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह की योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतःपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। अब राजा रेवत अपनी पत्नी से बैठे थे, उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो? अब फिर वही प्रश्न, कैसा वर चाहती हो? पहले राजा चाक्षुष ने पूछा था कैसा वर चाहती हो, अब फिर पूछा राजा रेवत ने, तुम कैसा वर चाहती हो, बताओ। ये सुनकर उस समय रेवती ने कहा, जो सबसे बलवान हो मैं ही मेरे पति हूं। वही उत्तर, जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे पति हो। ये सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी पत्नी के साथ दीर्घ आयु और बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार हो, सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्म लोक गए। राजा रेवत अपने रथ पर सवार होकर के, भाई सबसे बलवान भी हो और दीर्घ आयु भी हो ऐसा पति कौन हो सकता है, तो ब्रह्मा जी से पूछने के लिए गए राजा रेवत। है वहां घड़ी पर ठहरे, घड़ी मतलब 24 मिनट, इन 24 मिनट नहीं है, 24 मिनट तो बहुत ज्यादा है, कितना 20 मिनट। इतने नहीं पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगी का समय पूरा हो गया। महानंद ने नाग लक्ष्मी से कहा, हे देवी वो रेवती अभी ब्रह्म लोक में ही है, तुम उसके देह में प्रवेश कर जाओ और आवेश अवतारणी बनो, तब द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। प्राग विभाग मुनि बोले, नाग लक्ष्मी ने महाआनंद के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान शंकरसन की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के शरीर में प्रविष्ट हो गई। गोलोक धाम से महालक्ष्मी आई ब्रह्मलोक में, रेवती के शरीर में प्रविष्ट हो गई। हे दुर्योधन, तब भगवान शंकरसन पृथ्वी का भार हरण करने के लिए गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है, मैंने ये तुमको सुनाया है, ये समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है, जिसने सुना हो तो सुन लो, है? ये जो है समस्त पापों का नाश करने वाला परम मंगलमय है, हे युवराज अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। अत संकर्षणो भगवान भूरि भूमि भार हरणार्थम लोक नमस्कृतात् गोलोक धाम सकाशात् वत तारेदम बलभद्रस्य भगवत आगमनम मया ते कथितम सर्वदुरितापहरणम मंगलायनम युवराज कौरवेंद्र किम भूयास्रो तुम इच्छसीति। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम और क्या सुनना चाहते हो, तो आगे तो बहुत लंबी कथा है, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। हाँ जी, सुनिए सुनिए।
धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। एक प्रश्न मेरे मन में उठा था गुरु जी, कि यमराज महाजन ने
है?
यमराज जो है 12 महाजनों में से जो है एक महाजन यमराज है, तो यमराज जो है इस लीला के पीछे जो वो जाते हैं ज्योतिष मूर्ति के पीछे, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है उनका जाना।
इनका अच्छा प्रश्न है कि यमराज तो 12 महाजनों में से एक हैं, तो फिर क्या कारण है कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इसका उत्तर यही है कि ये जो महाजन लोग होते हैं, तो ये भी जो है भगवान की लीला में सहायक होते हैं, और भगवान का यश बढ़ाने के लिए, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए कभी कभी विलेन का काम करते हैं, खलनायक, है ना। तो यहाँ भी इसमें भी इरादा उनका यही होता है भगवान की महिमा को बढ़ाने का, ठीक है ना, यही उत्तर है। और नहीं तो दूसरा उत्तर ये भी है कि वो यमराज जो है उस मनमंत्र के थे, क्योंकि प्रत्येक मनमंत्र में यमराज बदलते हैं, तो इस मनमंत्र व्यवस्थित मनमंत्र के जो यमराज हैं तो ये सूर्य के पुत्र हैं यमराज, लेकिन वो यमराज जो है कोई दूसरे यमराज थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, तो ये उत्तर ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे।
हर मंत्र की
वो चाक्षुष मनमंत्र चल रहा था, तो समय के जो यमराज थे वो दूसरे थे, ठीक है ना, सूर्य भी दूसरे ही थे, इस समय सूर्य दूसरे चल रहे हैं, विवस्वान नाम के सूर्य हैं, वो चाक्षुष मनमंत्र 6वें मनमंत्र के सूर्य देवता थे, ठीक है। और
प्रभु जी, क्या हर मनमंत्र के जो यमराज हैं वो मतलब महाजन जो हैं वो जो बनते हैं?
हाँ, वो जरूरी नहीं है कि वो महाजन हो, वो मतलब जो भी हो, जैसे इंद्र हैं, इस मनमंत्र के इंद्र में जो है बहुत कमियां हैं, उसी प्रकार से जो है और भी देवताओं में बहुत कमियाँ हो सकती हैं, ठीक है। आपका प्रश्न है।
हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर बलराम कथा बताई। मेरा प्रश्न ये है कि जब लक्ष्मण जब शाम को जब पकड़ा था कौरव पक्ष के जो महारथी थे अधर्म पूर्वक, तो उसमें अर्जुन का नाम भी बताया गया है कृष्ण बुक में?
अर्जुन का नाम नहीं है कृष्ण बुक में, क्या अर्जुन का नाम है? वो देखना पड़ेगा, अर्जुन का नाम तो है नहीं। 6 महारथियों ने कैद किया था, तो उसमें ये सब लोग थे, दुर्योधन थे और जो है और कौन लोग थे, कृपाचार्य, कर्ण, यही सब लोग थे, अर्जुन नहीं थे।
और एक प्रश्न मेरा ये है कि जो भगवान जब संकर्षण जो है जब उन्होंने बोला जो वहाँ पर नाग पत्नियाँ थी जो उन्होंने बोला कि जब आप अवतार लें गोपियों के रूप में तो आप तपस्या करें, तो वो तो भगवान के मतलब इटरनल एसोसिएट्स हैं, पृथ्वी पर आती हैं, फिर भी वो तपस्या के लिए क्यों बोलते हैं भगवान?
सुना नहीं पड़ा क्या क्वेश्चन?
जो वहाँ पर नाग पत्नियाँ हैं जो भगवान की पार्षद है वहाँ पर, आप भगवान संकर्षण ने कहने कि जब आप पृथ्वी पर आए तो आप तपस्या करें आप मुझे प्राप्त
नाग कन्याएं।
हाँ
नाग कन्याएं हैं, तो नाग कन्याओं की इच्छा है उनको पति बनाने के लिए, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर जो है जन्म लोगी तो रासलीला मैं वहाँ करूँगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो नाग कन्याएं हैं वो, तो वो पूजा करने के लिए जब आती हैं शेर जी की पूजा करने के लिए आती हैं तो उनके अंदर जो है इच्छा पैदा हो जाती है उनको पति बनाने की, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवसर देते हैं कि इस तरह से अवसर होगा, अवसर मिलेगा। तो वो इच्छा जो है इस रूप में वो पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उनके मतलब कुछ दूसरे संबंध बने हुए हैं, उनका जो समाज है वो दूसरे प्रकार का है, दूसरे प्रकार के बंधन है, तो उसमें तो वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो फिर वो अगले जन्म में ही वो इच्छा पूरी कर सकती हैं अपनी। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की। हरे कृष्ण।